खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही ब्राह्मण जीवन का सार है। हर व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? खुशी। हर कोई खुशी की तलाश में है, तो खुशी के लिए हम सब ने बहुत प्रयास किए। भक्ति काल में अभी भी मानव मनुष्य प्रयास कर रहा है, तीर्थ यात्राएं किए, जप तप किए, पाठ पूजा किए, भगवान को ढूंढा, पैसा कमाया, साइंस के साधन बहुत इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो सब करने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है। लेकिन बाबा का बनने के बाद हम सबको कितनी खुशी मिली। फिर गीत क्या निकलता है? पाना था सो पा लिया, लेकिन वो गीत सुनने के बाद भी क्या वास्तविक वो खुशी रहती है कि कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ तो होता रहता है? तो वास्तव में खुशी तो ब्राह्मण जीवन बनने के बाद वास्तविक खुशी हमारी दिन प्रतिदिन वृद्धि को तभी पाती है, ना केवल बाबा का मिलने की खुशी, बल्कि बाबा से हम क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। जैसे मुरली तो सुन लेते हैं हम, लेकिन सुनने से खुशी नहीं होगी, सुनने के बाद उसको अपना बनाने से। जैसे हम मंजिल पर जाते हैं, तो मंजिल पर पहुंच तो गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद जो हमको प्राप्ति होती है, कोई मकान हमको बताया जाए कि इस मकान के पास आपको पहुंचना है, वहां पहुंच के, लेकिन जो उसके अंदर खजाने हैं वो बाहर खड़े होकर प्राप्त नहीं होंगे। उसके अंदर में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या है अंदर में। उसी तरह मुरली भी एक खजाना है, खुशी का खजाना है, जिसकी गहराई में हम जाते हैं, उसको विस्तार में उसके अंदर ही अंदर हम गहन उसका चिंतन करते हैं, तो हमको नए नए पॉइंट मिलते हैं। खुशी के बारे में बाबा ने मुरली में बहुत सारी बातें बताई हैं। बाबा ने कहा कि तुम एक बाप की याद में निरंतर रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम या तो गफलत कर रहे हैं, मर्यादाओं के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, अपने आप को ही कहीं ना कहीं हम धोखे में रख रहे हैं, और वो हमको पता भी होता कारण क्या है खुश नहीं रहने के। लेकिन उन चीजों को छोड़ना चाहते भी हैं लेकिन फिर भी छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी आदतें बना रखी हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, नेचुरल नेचर हो गई है जैसे। तो हमको कुछ नई आदतों का निर्माण करना पड़ेगा जो नेचुरल हमारे जीवन में खुशी देती रहे। खुशी ढूंढने की बात नहीं है, वास्तव में खुशी तो हमको स्वतः मिलती जाएगी जब हमारे पास हमारे अनुकूल खजाने जो हमको मिलते जाएंगे तो खुशी स्वतः मिलती जाएगी। इसलिए कहा जाता है खुशी ऐसी, खुशी ऐसे की बात मत पूछो, ये टॉपिक आज का विषय है, खुशी ऐसे की बात मत पूछो। तो ये किसका गायन है? ब्राह्मणों का। ये खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हम देखेंगे जीवन में निरंतर खुश रहना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि खुशी का संसार में अकाल पड़ा हुआ है। तो हम सबको जीवन में अगर सदा खुश रहना है, एक है खुश दूसरा है सदा खुश रहना है, तो सदा खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दुखी होना पड़ेगा। दुखी तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि खुशी की इच्छा हो रही है माना दुखी है, तभी तो खुशी की इच्छा हो रही है। तो हम कुछ एक बातों को देखेंगे कि जीवन में सदा खुश कैसे रहें। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमको ब्राह्मण जीवन में क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। स्वयं भगवान मिल गया और क्या चाहिए, लेकिन केवल इतना ही सोचना या वहां पर ही रुक जाना पर्याप्त नहीं है, वहां से तो हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आगे उसके कर्तव्य हमको पुकार रहे हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं तुमको दो ही अक्षर पढ़ाता हूं, बड़े आदमियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, अल्फा और बे, लेकिन ये दो अक्षर ही दम निकाल देते हैं। इतने वर्षों से इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 वो ही भूल जाते हैं, और दो अक्षरों में सारा सार समाया हुआ है। तो हमको क्या क्या प्राप्ति हुई है बाबा का बनने के बाद, जो हमको पहले नहीं थी और अब जो प्राप्ति हुई है, वो प्राप्तियां अगर हम स्मृति में रखेंगे, सबसे पहले तो हमको ज्ञान मिला, ये है ना, बाबा का जो बनते तो उससे पहले तो हमको ज्ञान ही मिलता ना। तो ज्ञान ये एक संजीवनी बूटी का काम करता है, ये अविनाशी ज्ञान, ये जो आत्मा को सुरजीत करता है, जो हमें अनेक प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकालता है, हमारे मन के दुख हर लेता है, हमें एक नया रास्ता दिखाता है, हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है, हमारी जो आंखें बंद थे अज्ञान इनमें सोए हुए थे तो जागृत हो गए, जैसे हमारी ज्योति जगाता है ये ज्ञान। इस ज्ञान की रोशनी से हमारे अनेक प्रकार के अंधकार समाप्त हुए, जो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती थी, हम सबको समझ मिली कि कैसे कैसे हमको सबके साथ मिलकर चलना है, हम सभी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी कैसे हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो एक इतना ऊंचा ज्ञान, तुम कौन थे, कहां से आए, कहां जाना है, अगर हमको ये निरंतर स्मृति में रहता है तो भी खुशी हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। वास्तव में खुशी गुम होने का कारण है विस्मृति, जैसे हम विस्मृत होते हैं खुशी गायब हो जाती है, जैसे स्मृति आती है तो स्थिति भी समर्थ बन जाती है। तो प्राप्तियां देखने हमको कौन कौन सी बाबा से प्राप्ति मिली, उनके हमको खुद ही सूची तैयार करनी है। अगर हम अब नहीं बनाते हैं उनको बार बार उनकी तरफ नजर नहीं फेरते हैं तो ऐसे रह जाती है। कोई चीज हमने अगर खरीद के रख ली, बहुत महंगी चीज है, उससे हमको बहुत प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है, और खरीद के हमने रख ली लेकिन उसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। मनुष्य की फितरत होती है कि पैसा तो बहुत कमा लेता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, लेकिन बैंक में जमा करता है, खुद नहीं खर्चेगा, इतना खर्चना भी है वो, फिर सरकार ले जाएगी उसको। जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करता है, इतने हाथ में उम्र रहता है, इतनी रणनीतियां बनाता है, कई कुछ करता है, पैसे कमा कमा के अपनी पूरी लाइफ गवा देता है, लेकिन खुद यूज नहीं करता है। तो हमको ये जो ज्ञान मिला है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, धन है। इस धन को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। केवल बाहर से हम ब्राह्मण तो दिखेंगे, लेकिन जो एक आंतरिक खुशी होनी चाहिए, आंतरिक बदलाव का जो संकल्प पैदा होना चाहिए, वो नहीं होगा। इसलिए ज्ञान को हमको बार बार उसके अंदर में जाना, गहराई में जाना है। और ये एक तो दिन की बात नहीं है, लंबे समय का अभ्यास है तो ही हम इसके अंदर जा पाएंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर तक ही रह जाता है और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो इस ज्ञान को हमको बार बार अंदर ही अंदर देखना है, जो हमको इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान से हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है, वो हमको कारण ढूंढने हैं। इतनी ऊंची प्राप्तियां सारे कल्प में केवल अभी ब्राह्मण लाइफ में होंगी, देवताएं भी इससे वंचित हैं, देवताओं को भी प्राप्तियां नहीं है। तो कितना ऊंचा हमारा जीवन है जो देवताओं से भी उत्तम है, देवताओं को जिस चीज का पता ही नहीं है, और बाबा ने हम सबको हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देके इतनी ऊंची प्राप्तियां करा दी, कौन कौन से खजाने मिले हैं, ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, संतुष्टता का खजाना, कितने सारे खजाने मिले हुए। तो जो प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं उन प्राप्तियों के आधार पर खुशी स्वतः बढ़ती जाएगी, खुश रहने का प्रयास नहीं करना है, खुशी तो हमको स्वतः ही बढ़नी चाहिए। खुश रहने को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, खुशी तो हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है, पुरुषार्थ हम करते रहेंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी अपने आप। तो सबसे पहले हमको देखना है प्राप्तियां, दूसरा है बैलेंस। जीवन में अगर बैलेंस नहीं है तो भी हमारी खुशी गायब हो जाती है, चाहे लौकिक लाइफ में है चाहे अलौकिक लाइफ में है। क्योंकि जब जीवन अनबैलेंस होता है तो वह मनुष्य संघर्ष करता है, इसलिए लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस चाहिए, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, पढ़ाई और योग याद दोनों इनका भी बैलेंस चाहिए। तो हमको देखना अनबैलेंस हमारी लाइफ कहाँ कहाँ हो रही है, क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो सबसे ज्यादा खींचातान कशम कश चलती है, लौकिक अलौकिक में चलती है, क्योंकि ज्ञान का हम कहीं ना कहीं सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर खींचतान रहती है। ये ज्ञान हमारे जीवन को सुखदायी बनाने के लिए है, ना केवल हमारे जीवन को बल्कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की आत्माओं को भी दुखों से उभारने के लिए ये ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है। तो हमको बैलेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लौकिक की जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको भी इग्नोर करते चले, उनको भी हमको निभाना है, अच्छी तरह से निभाना है, बल्कि पहले से तो और ही बेहतर निभाना उनको, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो केवल हम ऊपर ऊपर से, कल बताया था ना, ऊपर ऊपर से जैसे निभा रहे हैं, परसों हमारा उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर उनको जिम्मेवारी से निभा देंगे तो हमारा लगाव वास्तव में उधर बुद्धि जाएगी भी नहीं है। जैसे नर्स है, बच्चे का पूरा केयर करती है लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होती है, जब तक वो हॉस्पिटल में है उसकी पूरी तरह केयर करेगी, देख रेख करेगी, लेकिन वो चला गया तो उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। बैंक में कैशियर जाता है तो कैश की तो पूरा ध्यान रखेगा, एक भी पैसा कम नहीं होगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं है उसमें उसकी। घर गया तो वहां गिनती थोड़ा करता रहेगा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसी तरह से हमारी ये जिम्मेवारियां हैं, चाहे वो रिश्तों में है, पति पत्नी के रिश्ते में है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते हैं, तो उन सब रिश्तों में हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारे जो हिसाब किताब है वो खींचेंगे बाद में। हिसाब किताब हमको उसी क्षेत्र में रह के चुकतू करने हैं। हम भले उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं भी चले जाएं, हिसाब किताब तो वहां भी आएंगे, क्योंकि बीज हमने बोए हुए हैं और फल तो निकलेगा, और वो बीज तो सारे सूक्ष्म है। मन को जैसे उद्वेलित कर देंगे, मन हमारा भटकेगा, बुद्धि भटकेगी, तो हमको जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को हमको स्वर्ग बनाना है, वहां बैलेंस रखना है हर चीज का, लौकिक अलौकिक का, चाहे छोटा कर्तव्य है चाहे बड़ी जिम्मेवारियां हैं, कोई भी कर्तव्य है, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग बाबा के स्वतः मिलती रहती है। लौकिक वालों से ब्लेसिंग मिलना भी बहुत जरूरी है, और लौकिक परिवार से ब्लेसिंग लेना सहज काम है, लेकिन लौकिक परिवार से ब्लेसिंग लेना यहां थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां भी ब्लेसिंग चाहिए जरूरी। उन आत्माओं की दुआएं मिले, और वो दुआएं हमें निर्बंधन बना देंगी, वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ में पंख लगा देंगी, वो दुआओं के कारण हम जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे, और एक दिन आएगा वो स्वतः वो हमारी सहयोगी बन जाएगी। नहीं तो सहयोगी नहीं बनते हैं घर में, लौकिक वाले फिर बंधन डालते हैं, खींचतान होती है। तो उन जिम्मेवारी हमने कई देखा, कई जगह ज्ञान मिलने के बाद लौकिक जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं ब्राह्मण भाई बहने भी, और जैसे निभाते हैं तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन वो अनासक्त रहते हैं, वहां आसक्ति नहीं होती है। ये अपेक्षा नहीं रखते कि ये ज्ञान में चल पड़े, ये अपेक्षा हमको रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ये रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट भी होती है, स्वार्थ होता है कि ज्ञान में चल पड़ेंगे ना हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, हम घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से उनके प्रति कल्याण की भावना अंदर से रखना अलग बात है। अगर कल्याण की भावना है तो हम पहले उनके अनुकूल, उनके मन को पढ़ते हुए, उनके साथ एडजस्ट होते हुए उनके सहयोगी बनेंगे अच्छी तरह से। जब तक हम उनके मन को जीत नहीं लेते हैं तब तक वो हमारे सहयोगी नहीं बनेंगे, इसलिए उनका सहयोगी बनना अति अनिवार्य है। तो बैलेंस रखना जरूरी है, तो ब्लेसिंग हमको जीवन में मिलती जाएगी। तो ये दूसरी बात थी बैलेंस। तीसरा है, जो भी बातें बीती वो बातें भूल जानी है। उस कर्म क्षेत्र पर हम जो रहते हैं तो क्योंकि पिछली बातें, पास्ट की जो बीती हुई बातें हैं वो मन पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जैसे हम बैठेंगे मेडिटेशन में या किसी के संबंध संपर्क में आएंगे तो सामने वाले की पास्ट लाइफ जो उसने हमारे साथ बिहेवियर किया हुआ है वो हमारी बुद्धि में आता है। उसको भूलना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इसलिए बाबा कहते बीती सो बीती बिंदी लगाओ, क्योंकि उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो बीती है सो बीती है, उसको बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें भलाई यही है कि उस बात को हम भूल कर आगे का रास्ता तैयार करें खुद ही। तो हम बीती बातों को पकड़ के नहीं बैठने का, भूल जाने का है। हाँ, हमने उनसे सीखा है कुछ, उन बातों से सीखकर हम आगे के लिए स्वयं के प्रति अटेंशन रखेंगे तो उन बीती बातों को बिंदी लगा के आगे बढ़े तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और खुशी ऐसी मिलेगी जैसे बात मत पूछो। तीसरा है कमिटमेंट। जो भी हमने कमिटमेंट की हुई है भगवान के साथ या स्वयं के साथ, जो वायदे किए हुए हैं उन वायदों को निभाना, ये भी एक पुरुषार्थ है ना। कहते हैं प्यार करना तो आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। तो ये भगवान से प्यार किया हुआ है और बहुत बड़ी हस्ती है वो, इस प्यार को निभाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बलिदान देना पड़ता है। और वास्तव में कुर्बानियां बलिदान किस चीज का है, व्यर्थ का है वो देना आसान है लेकिन बताया ना कि उसकी हमको ऐसी आदत पड़ी उनको हम देना चाहते, जैसे दोनों लड्डू हाथ में पकड़ के रखना चाहते हैं, वो वाला भी ये वाला भी, एक लड्डू तो बलिदान देना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमको जो भी हमने बाबा से वायदे किए हुए हैं, प्रतिज्ञाएं, बाबा कहते इसलिए रोज अमृत वेले प्रतिज्ञाओं को दोहराओ। 5 दिन पहले था ना मुरली के वरदान में, रिवाइज करो प्रतिज्ञाएं जो बाबा से की हुई है कि मैं मन वचन कर्म पवित्र रहूंगा, बाबा की सेवा मददगार रहूंगा, ज्ञान का मनन चिंतन कर, जो प्रतिज्ञा कुछ हटके करनी है। एक है जो प्रतिज्ञा हमको बनी बनाई मिलती है कागज पर, वो हम दोहराना आसान होता है, लेकिन खुद की प्रतिज्ञाएं तैयार करके, क्योंकि हर एक का कर्म क्षेत्र अपना अपना है, हर के रिलेशन अपने अपने हैं, हर एक की सोच अपनी अपनी है, पुरुषार्थ का क्षेत्र अपना अपना होता है, संबंध संपर्क सबके अलग अलग हैं, तो कुछ हमको नई प्रतिज्ञाएं तैयार करनी, उन प्रतिज्ञाओं को रोज रिवाइज करना है, क्योंकि जब तक हम रिवाइज नहीं करते वो पक्की नहीं होती है। जैसे स्कूलों में बचपन में बच्चों को जबरदस्ती घोट घोट के उनको रट्टा डाला करने के लिए कहा जाता था, तो एक बच्चा पढ़ के पूरी क्लास को रिवाइज कराता था, वो पढ़ाते रहते पढ़ाते और वो पक्का हो जाता है, और वो हमारी आदत बन जाती है, तो वो संस्कारों में स्वतः आने लगता है। इसलिए बाबा ने स्टार्टिंग में डायरी लिखकर बाहर की, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं। तो अभी तो लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई, अभी तो मोबाइल में सारा चल जाता है, एक बार लिखा फिर कॉपी पेस्ट, उससे काम नहीं चलेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ये हमारी कर्मेंद्रियां जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, ना केवल मन की एकाग्रता बढ़ती है बल्कि पूरी कर्मेंद्रियां भी उसमें तन्मय हो जाती हैं। इसलिए लिखने की कला बहुत अच्छी है। हमने देखा है इस यज्ञ में जिन्होंने लिखने का काम शुरू से रखा है, देखते हैं हम वही उनका पुरुषार्थ ही बहुत अच्छा लगता है, और उनके मुख से जो निकले हुए महावाक्य हैं, चिंतन किया हुआ, वो सीधा दिल में लगता है, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने चिंतन लिखा हुआ है, चिंतन करते करते अपने चित्त को एकदम ज्ञान से जैसे भरपूर कर दिया हुआ है, शांत हो गया हुआ है, तो एक संस्कार बन गया, नेचुरल बन गया हुआ है। तो जो भी हम कमिटमेंट की हुई है भगवान से या अपने आप से, उनको रिवाइज करना है, रोज उस पर नजर रखनी है, दोहराना है, तो हमारे जीवन में खुशी ऐसी मिलेगी जैसे बात मत पूछो, है ना। और चौथा है, एक तो है ड्रामा। ड्रामा का राज ये भी बाबा कहते, ड्रामा अभी सुना ना, गीत में भी सुना कि हर बात में कल्याण है, लेकिन एक है हम केवल स्मृति में रखते हैं। जब तक हमारी दूरगामी दृष्टि नहीं होती है, दूरांदेश से दृष्टि होती है, तो कहीं कहीं कल्याण पर्दे के पीछे छिपा हुआ भी क्या दिखाई नहीं देता है। तो ड्रामा जो है बाबा कहते कल्याणकारी है, इस ड्रामा में अकल्याण की जगह है ही नहीं। तो हमको ड्रामा को रिवाइज करना है। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। उसमें क्या होता है, अगर हमें कोई ड्रामा याद नहीं है तो हमारी अपेक्षाएं दूसरों के प्रति कुछ अलग हो जाती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना रोल है, लेकिन उस रोल को हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और ऐसा होगा नहीं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। दूसरे को चाहते हैं कि इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो है ही ऐसा, ये तो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता है, बाबा ने इसके लिए ऐसा नहीं कहा हुआ है। लेकिन जिस आत्मा में जितनी क्षमता है वो उतना करेगा, दूसरा कर ही नहीं पाएगा। भगवान ने ज्ञान तो सबको दे दिया, लेकिन अप्लाई करने की क्षमता भी सबकी अपनी अपनी है। तो ड्रामा में हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अपनी क्षमता के अनुसार पुरुषार्थ कर रही है, हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल पाते। बताया ना, घर में भी हमारी यही अपेक्षा रहती है, पत्नी ज्ञान में चल पड़े, पति ज्ञान में चल पड़े, बच्चे ज्ञान में चल पड़े, चल तो पड़ेंगे, लेकिन वहां स्वार्थ समाया हुआ है, तो कुछ समय के बाद वो छोड़ भी देंगे फिर, और जब छोड़ देंगे ना तो डबल विघ्न पैदा होते हैं, क्योंकि उसको भी ज्ञान है अभी, और वो ज्ञान सुनाएगा, फिर ज्ञान सुनाएगा तो और ही विघ्न बढ़ेंगे, क्योंकि उसको भी ज्ञान है और उसको भी ज्ञान हो गया है। तो ये ज्ञान सुनाने के लिए पहले तो हमको बहुत निस्वार्थ रूप से ड्रामा को समझना पड़ेगा। ड्रामा की ढाल, जैसे बीज उस आत्मा के अंदर पड़े हुए उसमें पर अंकुरित हो जाएगा अपने आप ही, है ना। कई बार हम दादियों के मुख से सुनते हैं कि कितने सालों तक दादियों ने ज्ञान नहीं सुनाया कहीं को, केवल भोग ही बेचते रहे, उनको भोग तक ही सीमित रहे। दादी बताते हैं कि आत्मा को 26 साल तक खाली भोग ही बेचते रहे घर में, उसके बाद ऐसी ज्ञान में चलेगी बहुत फास्ट निकल गई। ये नहीं रखी अपेक्षा कि ये ज्ञान में चल पड़े, खाली भोग ही दे दो, जितना सहयोगी जो जितना है ना उसको वहां तक ही सीमित रखो फिलहाल शुभ। इसलिए बाबा ने कहा ना कि अंत में आत्माएं जो आएंगी उनके अंदर पुरुषार्थ करने का इतना सामर्थ्य ताकत नहीं होगा, अपने मनोबल से अपने मन की शक्ति से ही उन आत्माओं को सशक्त बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, उन आत्माओं में ताकत भरनी पड़ेगी। तो हम शुभ भावना शुभ कामना जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी पड़ेगी। जितना स्वयं के प्रति हम शुभ भावना शुभ कामना रखकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे, उतना सामने वाली आत्माओं को पूरा इफेक्ट पड़ेगा। हमारे अंदर अगर वो ताकत नहीं है तो दूसरों की हम जितना मर्जी देते रहे नहीं लगेगा वो। इसलिए ड्रामा की हर बात में कल्याण है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए, तीनों कालों को सामने रखते हुए, दूरादेशी दृष्टि से अगर हम हर कदम पर उस तरीके से पुरुषार्थ के प्रति हमारी सजगता रहती है तो निश्चित रूप से विजय हासिल होती है। फिर ड्रामा में कल्याण जो छिपा हुआ था पहले वो दिखाई देने लगता है। इसलिए बाबा कहते ड्रामा भी एक ड्रामा को ढाल की तरह यूज करो, तो ड्रामा भी जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक है बाबा जो ड्रिल सिखाते हैं वो तो है ही करते हैं, लेकिन एक है स्थूल एक्सरसाइज, वो भी अवश्य करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो हम एक्टिव नहीं रहते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। भले 10 मिनट 5 मिनट निकालो एक्सरसाइज, भले प्राणायाम करो या थोड़ा वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज अत्यावश्यक है। क्योंकि जब तक हमारा तन तंदुरुस्त नहीं होगा तो मन उसके साथ एकदम बंधा रहेगा, खींचेगा बार बार। इसलिए बॉडी को ठीक रखना, ये उसकी कला भी हम सबको पता होती है। हमें पता होता है ये खाने से गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये खाने से हमारी दिनचर्या उपनिच हो रही है, ये खाने से हमको सिर दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, अपच हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कहीं दर्दें हो रही हैं। लेकिन वो जानने के बाद भी अगर हम संघ में आकर उन चीजों को फिर भी अपने आहार में शामिल कर लेते हैं और उनको हम दिन प्रतिदिन उनको छोड़ने में ताकत नहीं आ रही है तो जीवन में परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए खाना पीना और एक्सरसाइज ये भी अति अनिवार्य है, हमको पता होना चाहिए। जैसे बताना शाही भोजन करना है, शाही भोजन कौन सा, वो पनीर वनीर नहीं, शुद्ध संकल्पों वाला। हाँ, जिसकी हड्डियां कमजोर है वो तो पनीर खा सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत भी आवश्यक है। नेक्स्ट है फॉरगिव, क्षमा करना, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने हमारे से कोई अनुचित व्यवहार किया हुआ है, किसी ने हमको दुख दिया हुआ है, उसको बिना कंडीशन के, बिना शर्त के माफ कर देने का। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण जीवन में हमारा टकराव होता है, तो टकराव होने के बाद उसको खींचना नहीं लंबे समय तक, हाथों हाथ क्षमा कर देने का है। हाथों हाथ क्षमा करना नहीं, क्षमा मांग भी लेनी है। क्योंकि कई बार सामने वाले की गलती होती है, हमारी नहीं है, फिर भी क्षमा मांग लो, उसमें हमारा क्या जाता है। और हमने देखा है होता है, अगर तो सामने से अगर हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहता है। अगर हमारा किसी से कटाक्ष हो गया, हमारा ऊपर नीचे हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने भी सामने से चार बोल दिए, तो हमारा योग लगेगा नहीं। भले हम जितना मर्जी बैठे रहे, एकाग्र हो गए, भले आंखें खुली है, एकाग्र नहीं, एकाग्र भले तन से होंगे लेकिन मन एकाग्र नहीं होगा अंदर से, वो हमारे अंदर ही अंदर खाता रहेगा। भले एकाग्र होकर बैठने की तन से हम एकाग्र हैं लेकिन मन के अंदर हलचल रहेगी और ही हमारा बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए आज की मुरली में बाबा तुमको क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या प्रश्न था आज का कि क्यों तुमको बाबा याद करने की डायरेक्शन देते हैं चलते फिरते भी, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ जाए, एक बाप की याद से कटेगा। इसलिए बाबा कहते चलते फिरते भी याद करो, उठते बैठते भी याद करो, तो है जी पापों का घड़ा भरा पड़ा है तो वो सिर पर है, तो उसको उतारने के लिए निरंतर चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि ये कोई थोड़े समय के लिए याद नहीं है, ये तो निरंतर याद है। खुशी हमको सारे जीवन में थोड़े समय के लिए थोड़ी चाहिए, निरंतर खुश रहना, यहां तक कि स्वप्न में भी खुश रहना है, स्वप्न में हमारी खुशी निकल गई। तो हम मेरे को एक बात याद आ गई, स्वप्न की बात करें तो हम जब यहाँ आए थे 99 में आए थे, तो यहाँ विशाल भवन में 27 नंबर कमरे थे, तो ऐसे दरवाजा था, हम इस तरफ सोए हुए थे, इस तरफ एक दूसरा भाई सो गया था। इस बात का जिक्र हमने कल भी किया था, तो वो भाई जो बाजू वाला सोया ना, उसको स्वप्न आ रहा था, उस स्वप्न में देख रहा था भूत प्रेत, बड़े डरावने सपने आ रहे थे उसको, तो वो सपने में वो देखते देखते डर गया और उठ के बैठ गया वो, और इस तरह मैं सोया हुआ था, तो मुझे सपने में ना हंसने की आदत है और लेकिन मुझे चलता नहीं पता, वो अभी पता नहीं आया नहीं पता नहीं वो तो मैं उधर उठ के ना, मैं भी उठ के हा 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 कर रहा हूं, उधर से वो उठ के बैठ गई, उसने इधर देखा तो बोला ये तो सचमुच हो रहा है, क्या हो रहा है, और ही डर गया, रजाई ले किसी फिर सो गया। हमने तो देखा फिर बाद में, क्योंकि उसने बोले क्या हो रहा है, तो जब मैं बोला हा 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 तो और ही डर गया वो। तो अर्थात ये हमारे ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन में इतना चेता कि वो हमारे स्वप्न तक उतर जाए। इसलिए बाबा ने मुरली में, एक मुरली में कहा है कि स्वप्न का आधार हमारा साकार जीवन है, जो भी हम सारे दिन में हमारी दिनचर्या में होता है, संकल्प बोल कर्म जो भी हम करते हैं, मन संपर्क में आते हैं, वो हमारे स्वप्न में जाता है। इसलिए अगर स्वप्न में ऊपर नीचे हो रहा है तो हमारा एक थर्मामीटर है, जांच है कि हमारा पुरुषार्थ अभी तक कैसा है। लेकिन उसमें हमको घबराना नहीं, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो हमको उसको चेंज करने का, करते रहना। तो यह है कि क्षमा कर देना है, बिना शर्त के क्षमा कर देना है। फिर नेक्स्ट है ज्ञान का डांस, बहुत जरूरी है। जो भी हम यहां सुनते हैं या मुरली में सुनते हैं, कुछ एक अपने आप में निश्चित कर देना कि 10 पॉइंट मुझे डेली मुरली याद रहने चाहिए, या क्लास सुनते हैं क्लास के 10 पॉइंट, जैसे कल यहां क्लास कराया था जीवन मुक्त जनक, तो उसमें देवेंद्र भाई ने 14-15 बातें बताई थी, तो वो कौन कौन सी बातें बताई थी वो याद करने का प्रयास करना, भले फिर उस क्लास को सुनना है कि राजा में कौन कौन से लक्षण होते हैं, वो उसका त्यागी तपस्वी जीवन होता है, न्यारा प्यारा भी रहता है, सबका पालनहार भी होता है, समय पर वेशभूषा बदल के प्रजा की देखरेख करता, कोई दुखी तो नहीं है, है ना। और उससे पहले कौन सी क्लास कराई थी, तो उसमें हमारा पेट कौन सी बातों से भरा होना चाहिए, वो कौन सी किस बातें बताई थी, तो हम अगर बुद्धि पर थोड़ा जोर डालेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान की डांस अंदर अंदर ही उतरेगी, और जितना डांस होंगे उतना हल्के रहेंगे, मन से हल्के रहेंगे। बोझ हमारे मन में होता है ना, तो मन को हल्का करने के लिए ज्ञान की डांस अति अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान ही हमारा भोजन है। ये अगर भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कमजोर होंगे, बीमारियां लगेंगी, जर्म्स बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट फिर लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो ज्ञान ही है, सीधी साफ है। तो ज्ञान का डांस भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट है हेल्प, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, चाहे वो ज्ञान में चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन हेल्पिंग एटीट्यूड हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी की हेल्प करने से जो खुशी मिलती है वो भी बहुत बड़ी हमारे जीवन के अनेक प्रकार की बाधाओं को समाप्त कर देती है। एक बार एक पति पत्नी थे और एक बच्चा था, तो वो पति भी मर जाता है, बच्चा भी मर जाता है, और पत्नी जो है बहुत डिप्रेशन में रहने लगती है, उदास रहने, वो निराश हताश रहने लगती है। ट्रीटमेंट भी कराया, कोई असर नहीं, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीने का कोई मंग सा नहीं आ रहा है, ख्याल आता रहे उल्टे उल्टे कि हत्या कर लूं, तो जीवन में जैसे मंग सा ही खत्म हो गया उसका। तो एक दिन बहुत ठंडी रात थी, तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसके पास में आया, तो देखा ये तो बहुत छुट रहा बेचारा, इसको मैं थोड़ी हेल्प करूं। वो औरत की जैसे होंठों से मुस्कान ही समाप्त हो चुकी थी, तो जैसे बिल्ली का बच्चा आया उसको उसने दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध पिलाया, तो दूध पी के चाट के तो बिल्ली का बच्चा थोड़ा खुश हो गया और वो उसके पांव से लिपट गया, तो जैसे उससे पांव से लिपटा तो उसको थोड़ी मुस्कान आ गई अंदर से, तो वो देखा कि इतनी छोटी चीज मैंने हेल्प की है तो मेरी खुशी लौट आई है, तो तब से उसने दूसरों को हेल्प करना शुरू कर दिया, और फिर एक लाफिंग क्लब हो गया उसके पास दूसरों को खुश करने का। तो एक छोटी सी मदद है, लेकिन कितनी खुशी उसको प्राप्त होगी। तो हम छोटी छोटी मदद करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे कोई बड़ा है, किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखता है, जाना है पहचाना है या अनजान है कोई भी है, अगर हम थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं। हमने देखा कई बार इधर आते हैं तो फोटो वोटो खींचने के लिए, तो 5 लोगों का ग्रुप होता है, अब वो किसी की फोटो गए तो हम फोटो खींच देते, तो उनको बड़ी खुशी होती है। एक तो कोई मना कर नहीं फोटो नहीं खींचने की, वो तो ठीक है नहीं खींचने की है, लेकिन समय पर किन परिस्थितियों में कहां किसको कैसे खींच के देनी है, जैसे वॉकिंग में जा रहे हैं किसी की सेल्फी, अभी सेल्फी में खींचने के तो सारा व्यू पीछे का नहीं आता वो, तो अगर हम उनकी फोटो खींच देते हैं उसी में खुश हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, हाँ अंदर में भाव रहता है, फिर वो हमारी फोटो भी खींच के ले जाएंगे, लेकिन करेंगे तो फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शायद उसी में भी सेवा हो जाए, उनको कोई साक्षात्कार हो जाए। तो बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हमको हेल्पिंग एटीट्यूड हमारा बना रहना चाहिए। दूसरों को हेल्प करना माना हम अपने आप को हेल्प कर रहे हैं, और जो हमें खुशी मिलती है वो तो सामने वाले तो खुश होंगे, लेकिन अपने को एक अलग से खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जो अपरिचित आत्माएं हैं उनकी हेल्प की है, तो वो खुश रहती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन सोचते हैं देखो ब्रह्मा कुमारी वाले भी कितने अच्छे हैं, नहीं तुम सोचते हैं ये फोटो वोटो खींचना हमारा काम नहीं है, ऐसा भी सोच रहे हैं, और वास्तव में वो तो नहीं है, वो ठीक है, लेकिन उसमें कोई हमारा कुछ जा तो नहीं रहा है, थोड़ा हेल्प ही किया ना, वो फोटो खींचते हैं, हमको उनको अच्छे से वाइब्रेशन देने, प्योरिटी के वाइब्रेशन देने, उनको सुख शांति की किरणें, हमको तो एक मौका मिला उनके सानिध्य में आने का, उनको अच्छे वाइब्रेशन देने का, प्योरिटी के वाइब्रेशन, क्योंकि हमारा मानसिक एटीट्यूड क्या है, दूसरों की सेवा करनी, वो किसी न किसी तरीके से हमारे संबंध में आ रहे हैं, तो उस संबंध में आने से ऐसा नहीं कि उनको हम दूर करें अपने से, उस संबंध में भी सेवा समाई हुई हो, तो हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा हम हेल्प करते रहें। नेक्स्ट है इग्नोर। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है, उनको इग्नोर करना पड़ता है। जैसे हम जा रहे हैं, दो लोग खड़े हो गए हैं, अब कोई दूसरी सामने वाला कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उनको इग्नोर कर देने का होता है। कोई ना कोई युक्ति, भले बहन झूठ बोलना पड़े कि मुझे काम है या कोई मिलने आया हुआ है, कि हमको क्योंकि हमको उससे निकलना है, तो वो झूठ कल्याणकारी झूठ है, तो हमको छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। युक्तियुक्त, जिसको कहेंगे युक्तियुक्त, बाबा भी कितनी युक्तियां, जब बताया ना काली कि तुम तो बड़े आदमी हो, दो ही तो शब्द बताता हूं, ज्यादा थोड़ा पढ़ाता हूं मैं, अल्फा और बे, और पीछा कितना पढ़ा दिया, 83 ईयर हुए, कितनी बड़ी युक्ति है, बोला अगली दिवाली आएगी नहीं, और दिवाली क्या, दिवाला निकल गया इधर संसार का, तो क्या कितना हो गया। तो बाबा की युक्तियां कितनी अच्छी लगती हैं, काला बाबा मुरली में स्टार्टिंग में कितने अच्छे अच्छे सामान दिए, तुम बड़े आदमी हो, ये हो, फिर बाद में बोला तुम तो असुर थे पहले, फिर असुर के बाद तुम राक्षस थे, तुम बंदर बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि थे, कितनी सारी गालियां बीच में आ गई। तो जैसे हमने बड़े प्यार से बाबा को सर्वव्यापी कहा था ना, बाबा बड़े प्यार से हम सबको गालियां दे रहे, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, लेकिन उसमें कितना प्यार समाया हुआ है, और वो गालियां सुनते कितनी खुश हो जाते हैं सारे कि हम बंदर थे, और वैसे अगर संसार में कोई बोले, लेकिन बाबा के मुख से निकले वो शब्द वो हमें कितनी खुशी प्रदान करते हैं, तो हमें खुशियों से भर देते हैं। तो कई बातों को इग्नोर करना है। नेक्स्ट है जिम्मेवारी। कुछ जिम्मेवारी हमको लेनी चाहिए, जब तक हमको कोई जिम्मेवारी नहीं मिलती है तो हम सतर्क नहीं रहते, सचेत नहीं रहते, हम डीले डाले पड़े रहते हैं, अलवेला अलवेला आलस्य तो हमको जैसे पकड़ के रखा होता है, वो हमारे साथ चिपका रहता है। जिम्मेवारी लेने से हमारे थोड़ा सतर्क रहते हैं, थोड़ा सोच चलती है, ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, हम सोचेंगे कोई हमको जिम्मेवारी मिली है तो इस काम को पूरा करने के लिए हम सबके संबंध संपर्क हैं, हमको इसको कार्य को कैसे करना, पूछेंगे सबसे, उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। जैसे हमको होमवर्क मिलता था, मिलता है इसको या किसी को भी मिल जाए तो सारा दिन उसमें सोचना पड़ेगा ना, नींद फिट जाती है, और उस जिम्मेवारी में सचमुच एनर्जी समाई हुई है, वो नींद ऐसा नहीं कि बाद में तंग करेगी, वो नींद खत्म हो जाती है, परमानेंट ही खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं कि आज हम नींद से तो कल मैं कसर निकाल दूंगा, वो आएगी नहीं नींद। तो जिम्मेवारी ये भी हमको अंदर से खुशी दिलाती है, जब हम उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाते हैं, और जहां उस जिम्मेवारी के बाद सच्चे मन से हम पूरा करते हैं, जो सक्सेस मिलती है, तो वो सक्सेस हमको खुशी दिलाती है, खुशी ऐसी मिलती है कि बात मत पूछो। तो ये था कौन सी जिम्मेवारी। नेक्स्ट है ये जीवन एक खेल है, और इस खेल को कैसे खेलना है, हाँ जी, खेल समझ के खेलना है, इस खेल के हम खिलाड़ी हैं, इसमें हम सबको महारत हासिल है, क्योंकि खेल बहुत बार खेला हुआ हमने, अनेकों बार, हजारों बार, करोड़ों बार खेला हुआ है, तो इसको द्वारा खेलना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें परिस्थितियां आ रही है, हार जीत का आ रहा है, दुख सुख का खेल है, बाबा ने कितने प्रकार की, रात दिन का खेल है, एक सेकंड का खेल है, ये आने जाने का खेल है ये, तो हाँ जी, तो ये सारा खेल है। इस खेल में हमको कैसा पार्ट प्ले करना है कि हमको इसमें गोल्ड मेडलिस्ट लेना है, गोल्ड मेडल लेना, और हमारा वो है ही है, क्योंकि स्वयं कोच कौन है हमारा, सुप्रीम अथॉरिटी है, क्योंकि उसको पता है ये हार जाएंगे तो नाक तो उसकी कटेगी, तो हमारे पर पूरा ध्यान रखा हुआ है, तो उसकी कोचिंग भी हमको अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, और उस खेल में पारंगत होने के लिए हमारे में वो क्षमताएं, विलक्षण क्षमताएं जैसे उभरती जाएं, मतलब बढ़ती जाएं अंदर से, प्रतिभाओं के हम धनी बनते जाएं, उत्कृष्ट प्रदर्शन तभी हो पाएगा जब वो जो खेल खिला रहा है हमको उसमें अच्छी तरह पारंगत हो, हर खेल की बारीकी को अगर हम अच्छी तरह से सीखते हैं तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर खुशी ऐसे मिलेगी कि बात मत पूछो। नेक्स्ट है लविंग, लविंग एटीट्यूड, हमारा स्नेहिल व्यवहार होना चाहिए सबके साथ, कोई कैसा भी है, चाहे देखते हैं कोई पुरुषार्थ नहीं भी कर रहा है, या कोई हमको गालियां दे रहा है, हमारे प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, हमारे से अच्छा नहीं रहता है, फिर भी हमको उससे स्नेह करना है। लेकिन उससे स्नेह तब होगा जब पहले हम अपने आप से स्नेह करेंगे। दूसरों के प्रति घृणा तब आती है जब पहले हमें स्वयं के अंदर ही कहीं ना कहीं घृणा भरी हुई है। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है कि भगवान ने हमको चुना हुआ है, उसने हमारे से प्यार कर लिया है, तो मैं अपने आप से नफरत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसका दिया हुआ जीवन है, अभी तो उसका दिया हुआ जीवन है, उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसकी प्रॉपर्टी से हमारा उतना स्नेह रहना चाहिए, शुद्ध स्नेह, परमात्म स्नेह। तो ये है, सबके प्रति स्नेह की भावना रहनी चाहिए। और जहां स्नेह होता है वहां हर कार्य सहज होता है, वहां मुश्किल नहीं लगती है। जहां स्नेह होता है वहां सहयोग देना मुश्किल नहीं होता है। ना केवल हम सहयोग देंगे बल्कि सामने से भी हमको सहयोग मिलेगा। तो सबको बाबा कहते हैं, तीन चार प्रकार के बाबा बच्चे कहते हैं, स्नेही बच्चे, सहयोगी बच्चे, योगी बच्चे, प्रयोगी बच्चे। तो ये हमको पहले से, सबसे पहले स्नेही बनना है। तो फिर योगी अपने आप, जहां स्नेह योग लगाना मुश्किल नहीं होगा, स्नेह का सागर है वो। तो जैसे वो स्नेह का सागर है, हम बच्चे भी उसके हैं, तो हम भी मास्टर स्नेह के सागर हैं। तो स्नेह हमारी रगों में, परमात्म स्नेह हमारी रगों में समाता जाए, हमारे से परमात्म स्नेह के वाइब्रेशन निरंतर निकलते जाए। नेक्स्ट है, ये जीवन एक मुसाफरी की तरह है, ठहर नहीं जाना है, मुसाफरी का पूरा आनंद लेना है, चलते रहना है। जीवन में साइड सीन आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमको वहां रुकना नहीं है, उन परिस्थितियों से सीखकर हमको आगे निरंतर बढ़ते जाना है। तो इस मुसाफरी का आनंद लेना है, कोई कैसा सीन आएगा, कोई कैसा सीन आएगा, कोई कैसे लोग मिलेंगे, कोई कैसे लेंगे, लेकिन वहां पकड़ के नहीं बैठ जाने का हमको। हमको मुसाफरी मंजिल पर अगर पहुंचना है तो इस मुसाफरी को हमको खुशी खुशी समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, किस समय तक कहां पहुंचना है, कहां रुकना है, कहां नहीं रुकना है। तो इस मुसाफरी, इसलिए कहते हैं, दुनिया रहने से रहना, घर में रहना, घर ते रहे। ये तुम यात्रा अपने के लिए है, थोड़े समय के लिए मिलजुल रहे हैं, मंजिल तो हम सबकी एक ही है। तो इस मुसाफरी पर हम ठीक ठाक चलते रहेंगे तो मंजिल पर समय पर पहुंचेंगे। तो ये है मुसाफरी। नेक्स्ट है जो बाबा के अंतिम तीन महामंत्र हैं, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। ये हमको जीवन में जैसे समा लेना है। मेडिटेशन हॉल में एक चित्र है, तीन चित्र लगे हुए हैं और सेंटर में भी ऑलमोस्ट लगे होते हैं। तो उन तीन चित्रों को देखते हुए निरंतर ये वरदान जैसे हमारे में समाते जाए हुए अनुभव, जैसे ब्रह्मा बाबा का लगा हुआ है, शिव बाबा का लगा हुआ चित्र, मम्मा का लगा हुआ है, पहले भी एक बार क्लास में यहां जिक्र किया गया। शिव बाबा के कास्कट को देखते हुए निराकारी स्थिति का अभ्यास, ब्रह्मा बाबा के कास्कट, ब्रह्मा के चित्र को देखते हुए निरहंकारी, और मम्मा के चित्र को देखते हुए निर्विकारी का। तो वो निरंतर निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, एक ड्रिल है ये। निराकारी स्थिति में होंगे तो परम धाम का अनुभव हो जाएगा, निर्विकारी स्थिति में होंगे तो स्वर्ग का अनुभव होगा या पूज्य स्वरूप का अनुभव होगा, और ब्रह्म बाबा का तो साकारी जीवन में, फरिश्ता जीवन में। तो ये ड्रिल भी हमको अलग अलग तरीके से करनी है। तो ये हमको तीन महामंत्र हमेशा याद रहना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उतारा है, उसी तरह से हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसको अपने में आत्मसात करते चले। तो यह है निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। नेक्स्ट है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी हमको मौका मिलता है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार हाथ से मौका निकल गया वो दोबारा फिर आएगा तो सही, लेकिन दोबारा फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि एक आदत पड़ गई है। दोबारा 5000 साल बाद मिलेगा, लेकिन वो भी फिर भी नहीं करेंगे। तो जो भी हमको मौका मिलता है किसी भी पुरुषार्थ का, सेवा का, वो हमको छोड़ना नहीं है। हो सकता है उसी मौके में हमारे सारे पाप भस्म होने का कुछ ऐसी कोई टेक्निक निकल आए, उस अपॉर्चुनिटी से हम आगे निकल जाएं। तो मौका नहीं छोड़ने का भी। जैसे कोई भी अगर बस में जा रहा है, 2 मिनट भी लेट हो गया तो क्या होगा, कितना उसको दुख होता है। 1 सेकंड भी, खिलाड़ी जो दौड़ रहे होते हैं, अभी जो मैराथन दौड़ हुई, मैराथन दौड़ जो लास्ट में सेकंड फर्स्ट कैच जीता है, उसमें हम भी फोटो खींच रहे थे। तो जो हमने फोटो खींचा ना, एकदम सबसे बढ़िया फोटो आया। वो जो उसका क्रॉसिंग था, तो उसमें आधे कदम से जीता हो, केवल आधे कदम से, जो फर्स्ट वाला आधा कदम उसका यहां जमीन पर पड़ा नहीं हुआ लेकिन आगे बढ़ गया था, और दूसरे का पांव आ गया जमीन पर लेकिन वो थोड़ा सा नीचे पीछे है, आधे माइक्रो सेकंड का एक। हाँ, तो कितना वो फर्क है कि समय, समय कितना ही होता है, आधे सेकंड से कितना फर्क पड़ गया, 20,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला। वो उसको 10,000 का, उसको 51, उसको 41। तो कोई भी हमको मौका मिलता, तो मौका छोड़ने, मौका आते चौका लगा दो। इसलिए जीवन हमें सुनहरे मौकों से भरा पड़ा है, गोल्डन चांस, बाबा कितने चांस लर बनो। तो अगर ये मौके पर हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खुशी ऐसी मिलेगी जैसे बात मत पूछो। नेक्स्ट है पी, पी माना पूर्वज, हम पूर्वज हैं। जैसे घर में पूर्वज सबकी पालना करते हैं, हम सबकी पालना करने वाले हैं। चाहे घर में आजकल बहुत प्रॉब्लम आती है, कई हमको माताओं के बहनों को भी कई फोन आते, बेचारे बहुत रोते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं हमारी उनके साथ अटैचमेंट है, हम अपने स्वमान में सेट नहीं रहते हैं। अगर हम सोचेंगे हम पूर्वज हैं, इनकी पालना करने वाले हैं, सबको बच्चा समझेंगे, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समझ के अगर हम उनकी पालना करेंगे, हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे, तो वो जो पालना उनको जो वाइब्रेशन मिलेंगे वो बदलने की उनमें लक्षण दिखेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे वो, नहीं तो हमारी अटैचमेंट रहती है उनसे। इसलिए जो जब भी हम उनके साथ रहते, हमको स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं कौन है, पूर्वज हैं, सृष्टि के आधार में तो उद्धार मूर्त हैं, उनका कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। लेकिन ये सब विस्मृत हो जाता है तो हमको लौकिक संबंधी दिखाई देते हैं, हमारा जीवन अलौकिक हो गया टोटल, कहां भी हम रह रहे हैं। तो उनको भी अलौकिक दृष्टिकोण से रहकर जब हम अपनी पोजीशन पर सेट रहते हैं, स्टेज पर सेट रहते हैं, पोजीशन से जैसे उतरते हैं तो नेचुरली है ऑफिसर कुर्सी पर बैठा है तो सारे कर्मचारी कंट्रोल में काम करते रहेंगे, जैसे ऑफिसर ने पीठ की सारे कर्मचारी, आजकल तो देखते हैं सरकार में क्या हाल होता है, भले कितना भी करें लेकिन फिर भी हैं तो वही ढाके तीन पात रहते हैं। तो हमको अपनी पोजीशन सेट रहना है, अपने सम्मान में सेट रहना है, अपने जो कर्तव्य है उनके प्रति जागरूक रहेंगे तो उसका कर्म क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो बाहर से हम जितना मर्जी पढ़ाई लिखाई करते लेकिन अंदर में उतरेगा नहीं। इसलिए अंदर ही अंदर हमको स्मृति में रखना है कि मैं एक पूर्वज हूं, पवित्र आत्मा हूं, जितने भी पोजीशन है हमको बाबा ने सम्मान दिया है, उस सम्मान की माला निरंतर हमारे गले में पड़ी रहे। तो यह है पूर्वजों। नेक्स्ट है अपने आप से प्रश्न पूछना है कि मुझे भगवान ने चुना किस लिए हुआ है, उस संसार में भी तो थे लेकिन इस संसार में मैं आया क्यों, फिर अगर इस संसार में आकर उस पुराने संसार के मैं कर्तव्य करता रहा तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ, और ही हमारे बोझ और ये चढ़ता जाएगा, तो वहीं मकान में कहीं एक रेत के कण की तरह लग जाएंगे जहां स्वर्ग में जाके। बाबा ने कहा ना, उस दिन स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात थोड़ा नहीं है, लेकिन वहां ऊंच पद पाना बड़ी बात है, और उस स्वर्ग को तो छोड़ो, उससे तो बेहतर ये वाला संगम हो गया। अगर इस पर हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं है, इस पर हम खुश नहीं रह रहे हैं, इसलिए बाबा की एक मुरली है शायद 780 की है कि संपूर्ण तुमको बनना है ये संकल्प निकाल दो, इसी संकल्प से तुम्हारा पुरुषार्थ ठंडा हो रहा है, तुम हो ही संपूर्ण अवस्था में, तुम संपूर्ण मूर्ति बनकर रहो हमेशा, तभी संपूर्ण मूर्ति तो साक्षात कर पाएगी ना। अगर हमारी मानसिकता विखंडित है, एक खंडित मूर्ति है तो साक्षात कैसे कराएगी। तो 1980 की मुरली है कि तुम्हारी संपूर्ण, तुम हमेशा संपूर्ण स्थिति पर स्थित रहो, ये नहीं सोचो कि मुझे संपूर्ण तो अंत में बनना है, ये सोचना भी पुरुषार्थ को ठंडा करना है, आलस्य अलवेला पहना है। बाबा कहते हैं हमेशा अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होकर रहो कर्तव्य। तो हम अपने आप से प्रश्न पूछने हैं कि जिस कर्तव्य को भगवान, कर्तव्य के निमित्त भगवान ने हम सबको निमित्त बनाया है, क्या वो उसके हम पर खरा उतर रहे हैं, तो अपने आप से प्रश्न करना है। नेक्स्ट है रिफ्रेश, रिवाइज। जैसे पहले ही बात हुई कि जो भी बातें हम सुनते हैं इनको रिवाइज करना, मन ही मन, मन को काम देना है, नहीं तो मन ऐसा तूफानी घोड़ा है उसको कंट्रोल करना, संसार में कहते हैं ना मन तूफानी घोड़ा है, कंट्रोल कितना चंचल है, भागता क्यों है, तो भागने को कंट्रोल करने का तरीका ही है कि उसको काम देना चाहिए। तो अपने आप को रिफ्रेश करते रहना। कोई भी एक क्लासे हैं या कोई भी मुरली के पॉइंट है, 10 पॉइंट निकाले, 10 शब्द सुने केवल, वो 10 शब्द जैसे बाबा ने परसों मुरली कहा कि तुम इस संसार में कैसे हो, टेम्परेरी हो, केवल टेम्परेरी है, इंडिपेंडेंट है आत्मा। तो कुछ एक शब्द है जो हमको अंदर अंदर दोहराते हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो क्या मैं सचमुच इंडिपेंडेंट हूं, या कोई बंधन हमको बांध के रखे हुए हैं, मन से हमने खुद ही पकड़ के रखा हुआ है। तो अपने आप से प्रश्न पूछने हैं और रिफ्रेश करते रहना है। नेक्स्ट है ट्रस्टी होकर रहना है, हम केवल ट्रस्टी हैं। जैसे पहले बताया बैंक में खजांची कैसे होता है, कैशियर को उसके ट्रस्ट होता है, उसमें लगाव अटैचमेंट नहीं होता है, और साथ साथ में तैयारी करनी है, घर जाने की तैयारी। जब मनुष्य तैयारी करता है तो उससे जिस स्थान पर वो रहता है वहां अपने आप ही उसका लगाव खत्म होता रहता है। तो हमको इस संसार से जाने की तैयारी करनी तो है ही, आज नहीं तो कल जाना ही है, लेकिन उस स्थान पर, उस स्थान का अनुभव हमको अभी करना है वो, क्योंकि वहां पर पहुंचने तो अनुभव ही नहीं कोई भी, वहां तो एक सुषुप्त अवस्था है, तो उसका अनुभव हमको यही करना है, निर्वंदन, एकदम जो परम धाम की कुछ अवस्थाएं बताई थी, निर्लेप, निर्वंदन, निराकारी अवस्था, तो वो उसका हमको अनुभव यही करना है। तो तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट है हमेशा उपराम रहना है, यू से उपराम या ऊपर रहना है, ऊपर वाले राम के पास रहना है। नेक्स्ट है हमेशा जो दिव्य गुणों की माला वर्च्यूज वो हमारे गले में पड़ी रहनी चाहिए। तो वहां 36 गुण लिखे हुए हैं, वो कौन कौन से 36 गुण हैं? वो 36 गुण हैं अथक, अंतर्मुखता, अनुशासन, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, निर्भयता, नम्रता, न्यारापन, निश्चिंतता, निरहंकारिता, नियमितता, स्नेह, सहयोग, सादगी, साहस, संतुष्टता, सहनशीलता, सरलता, स्वच्छता, श्रेष्ठ भावना, शालीनता, शुभ भावना, शुभ कामना, मधुरता, रहम दिल, रमणीकता, गंभीरता, यथार्थता, पवित्रता, परोपकारिता, ये 36 गुण है वहां। तो ये बैठे बैठे आप जब भी योग में ना करें, ये लंबे समय से हम भूल जाते हैं। बहुत साल पहले हमको सारे याद थे, बीच में फिर भूल गए थे, टोटली भूल गए थे, फिर हमने प्रयास किया और देखा जैसे हम याद करते हैं सचमुच रिफ्रेश रहते हैं वो। तो दिव्य गुणों की माला हमारे गले में पड़ी रहनी चाहिए और वरदानों के भंडार, कुछ दिन पहले मुरली में था ना कि तुम पावनता के भंडार हो, तो वरदानों की बरसात हमारे ऊपर रोज बाबा से वरदान लेने के बजाय अनुभव ही करना है कि मैं इन वरदानों की मूर्त हूं। एक होता है जैसे बाबा वरदान दे रहे हैं विश्व कल्याणकारी भव, अब वास्तव में इससे भी हटके लेना है क्योंकि ये तो ले रहे हैं हम, लेकिन हम बन चुके हो, जैसे बताया ना संपूर्णता की मंजिल पर खड़े हैं कि मैं आत्मा हूं, ये मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत मुहूर्त आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर शांति का सागर हूं, मैं फरिश्ता हूं, अव्यक्त फरिश्ता हूं, निराकारी निरंकारी निर्विकारी हूं, दानी महादानी वरदानी हूं, त्यागी तपस्वी विश्व सेवादारी हूं। अंदर ही अंदर वरदानों की माला हमारे गले में पड़ती रहनी चाहिए, जैसे वो टपक रहे हैं हमारे ऊपर, बरसात हो रही है उनकी। नेक्स्ट है बाच करना, अपने आप को देखना है, या दूसरे कहेंगे वेल्थ, धन दान करना है, दो मिनट, धन दान करना है, जो हमको ज्ञान दान मिला है, ना केवल अपने तक सीमित रखना है बल्कि दूसरों को भी दान करना है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ होना चाहिए सारे दिन में, जो हमारी दिनचर्या बनी है उससे थोड़ा सा हटके 5 मिनट, जैसे आज के दिन में बैठे हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा बाबा के कमरे में बैठे, भले योग के उसी समय बाद या दिन में कभी थोड़ा सा टाइम निकल के, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे जैसे बाबा कहते हैं मधुबन में पहुंच जाओ, संडे की मुरली थी तो मधुबन में कहां पहुंच जाओ, चारों धाम, या सोचो वहां घर में बैठे हुए हैं तो मधुबन के जहां डाइनिंग हॉल है वहां फलानी जगह क्या लिखा हुआ है, या यहां क्या लिखा हुआ है, या वहां क्या लिखा हुआ है, ये भी एक मन की ड्रिल है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने का। नेक्स्ट है वाई, वाई से मैं यमराज हूं, अपना दूसरों का नहीं स्वयं का यमराज बनना है, यमराज से डर रहता है, तो अगर हम अपने आप को रखेंगे तो हमें पापों से मुक्त रहेंगे, मैं तो करते रहेंगे। और नेक्स्ट लास्ट है जीरो से हीरो बनना है, जीरो बनना है और हीरो बनना है। तो ये कुछ एक बातें थी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो तो भी बहुत सारी निकाली थी, लेकिन कुछ एक बातें हैं जिनका हमने यहां वर्णन किया है, तो हमको ये निरंतर जीवन मिलानी है, तो खुशी ऐसी मिलेगी कि बात मत पूछो। तो एक सरदार जी थे और एक विदेशी था, तो सरदार लोग ना बड़े दिलेर होते हैं, सरदारों जैसे सेवा शायद ही कोई करता हो। कहा जाता है सरदार जो है ना कहीं आपको मांगता हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरों की इतनी हेल्प करते हैं वो। हमने देखा पंजाब में ऐसा लंगर लगाते हैं, लोगों को रोक रोक कर उनको खिलाते पिलाते हैं, साथ में बांध के भी दे देते हैं। तो एक सरदार जी थे और एक विदेशी था, तो विदेशी इंडिया में आया, फिर उसने हिंदी सीख ली, तो उसको थोड़ा हो गया मैं हिंदी जानता हूं, तो जो भी सेंटेंस बोले सरदार जी तो हिंदी में बोल दे वो, तो उसको बड़ा हो गया भाई तो सारी हिंदी जान रहा है, तो सरदार जी बोला क्या किया जाए। तो विदेशी को गया तो मैं सारी हिंदी की ट्रांसलेशन कर लेता हूं, तो बोला अच्छा ठीक है। तो विदेशी को पूछा सरदार जी ने कि तुम सारी हिंदी की ट्रांसलेट कर लेगा? हाँ कर दूंगा। तो फिर सरदार जी ने बोला इसकी ट्रांसलेशन कर अभी तो ये है कि ये तो खुशी का चुटकला था बीच में तो हमको कुछ ऐसा यूनिक अलग से जो कुछ दूसरा ने कर पाए तो ये हमने 26 बातें सुनी जो हमारे जीवन में खुशी रहनी चाहिए। सबसे पहली बात थी प्राप्तियां, एंटेनमेंट्स, वो उसमें और भी बातें, दूसरों को अप्रिशिएट करना या हमारी अप्रोच के कहाँ तक है, वो सारी बातें आती हैं। तो पहली बात है एंटेनमेंट, सब प्राप्तियां, प्राप्तियों की लिस्ट हमारे हाथ में है। दूसरा है बैलेंस, ब्लेसिंग मिलती रहेगी या बीती बातों को भूल जाना। तीसरा कमिटमेंट, जो हमने वायदे किए हैं उसको पूरा निभाना पड़ेगा, निभाने के लिए बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट डी, डिटैचमेंट और ड्रामा। डिटैचमेंट भूल गए थे, डिटैचमेंट बहुत, हाँ लिखा हो, डिटैचमेंट वाला, जैसे दूसरों को हम, दूसरे परिवार को, पड़ोस को कैसे देखते हैं, अगर पड़ोस में कोई विपत्ति आए तो वो हमको नहीं लगती है क्योंकि पता है पड़ोसी है ये, ऐसे अपने घर वालों को भी ऐसे देखना है कि भी पड़ोसी है, और घर वालों को नहीं बल्कि अपने आप को भी ऐसे देखना है कि मैं भी पड़ोसी हूं, ये हुई नहीं, तो डिटैच रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जरूर करनी है। नेक्स्ट फॉरगिव, क्षमा कर देना बिना किसी शर्त के। नेक्स्ट ज्ञान डांस करते रहना है। नेक्स्ट हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा हम दूसरों की मदद करते रहें, कोई कैसा भी, यहां तक कि हमें जीव जंतुओं की मदद करनी है, पेड़ों को भी मदद करनी है, पेड़ों से भी प्यार करना है। प्रकृति हमारी 5,000 साल से हमारी पालना करती आ रही है, तो कुछ तो फर्ज बनता है ना, उसको भी हम शुभ वाइब्रेशन दें, उसको भी पवित्रता, डेली प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशन देने हैं, क्योंकि उसको पवित्र तो हमको बनाने, जीव जंतुओं को भी देने हैं। तो ये हेल्पिंग एटीट्यूड। नेक्स्ट इग्नोर करना, बहुत सारी बातों को, कौन कौन सी बातें इग्नोर करनी है वो हम सब अपने अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट जिम्मेवारी के प्रति पूरी सजगता से, जिम्मेवार जहां होंगे और पूरी उसमें निभाने में लग जाएंगे तो खुशी हमारी अपने बढ़ती जाएगी, पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। खेल, ये जिंदगी एक खेल है, खेल को कैसे खेलना है, खुशी खुशी खेलना है, अब रो के खेलो हंस के खेलो, खेलना तो है ही है, अगर इतना ऊंचा ज्ञान दिया तो क्यों नहीं हम हंस हंस के खेले इसको। नेक्स्ट लविंग, हाँ हमारी लविंग एटीट्यूड होना चाहिए, लविंग बिहेवियर होना चाहिए, सबके साथ स्नेह, ना केवल दूसरा अपने से भी स्नेह होना चाहिए। नेक्स्ट है ये जीवन एक मुसाफरी की तरह यात्रा है, इस यात्रा पर निकले हुए हैं तो यात्रा का हमको आनंद लेना है, रुकना नहीं है। जैसे सन्यासी लोग 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, तो हमको निकलते हैं, जहां हम रहते हैं उसे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये 3 मंत्र हमको हमेशा स्मृति में रखकर उनके प्रति पूरा पुरुषार्थ करते रहना, ताकि बाबा के नक्शे कदम पर हम चलते रहे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका मिले छोड़ने का नहीं है, कैसा भी मिले, जहां मौका मिलेगा और हम हाँ कर देंगे, क्योंकि हाँ करने में पहले ही बताया गया था, हाँ करने में पॉजिटिव एनर्जी समाई हुई है, जैसे हम हाँ करेंगे ना वैसे सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होने लगेंगी, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलने के लिए सारे वो सोर्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट पूर्वज, हम स्मृति रखनी, हम कौन है, पोजिशन पर स्थित रहना है, वो अपनी पोजिशन पर स्थित रहेंगे तो सारे काम स्वतः होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप से प्रश्न करना है, कौन से प्रश्न, कि मैं भगवान का बना क्यों या भगवान ने मुझे क्यों चुना हुआ है। नेक्स्ट रिवाइज करना है, जो भी हम सुनते करते हैं सबको रिवाइज करना है, मानी माना, ताकि वो रिफ्रेश रहेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसा रह गया सर्विस, सेवा, ऐसे बहुत सारे, ऐसे ऐसे कोई 30-35 बातें हैं, इसलिए वो रहेगी ऐसे लगी था, ऐसे माना स्वतंत्र रहना है, सर्विस में लगे रहना है, संपूर्णता, संपूर्णता बताया था, संपूर्णता की स्टेज पर हमेशा स्थित रहना है। नेक्स्ट तैयारी, तैयारी करनी है अब घर जाने की तैयारी। नेक्स्ट उपराम रहना है। नेक्स्ट वर्च्यूज की माला या वरदानों की माला हमेशा पहन के रखनी है। नेक्स्ट वॉच, स्वयं को वॉच करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ही से हो गई, एक्स्ट्रा कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ तो एक्स्ट्रा करना है डेली। नेक्स्ट यमराज, मैं स्वयं का यमराज हूं, ये भी स्मृति में रखना है, एक नया सम्मान है। और नेक्स्ट जीरो बनेंगे तो, ये अगर सारी बातें भूल जाए तो कुछ करने का ही नहीं है, बस जीरो बन जाने का है, जीरो बनेंगे तो हीरो बन ही जाएंगे। ओम शांति।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा।
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन,
अजमा में कामयाबी तू झुकाए जा।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा
जाए जा। सच की डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं,
सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं।
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो,
मर के अमर है वो, कभी नहीं मरते हैं।
अपना लिखाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा।
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू चुकाए जा।
खुशियों के गीत सदा